ओम शांति। आज का टॉपिक है खतरनाक ज्ञानी पंडित, है ना। तो पहले हम इसका मीनिंग समझेंगे क्या होता है। ज्ञानी तो है लेकिन खतरनाक भी है और पंडित भी है, तो उनके अंदर ज्ञान की कमी नहीं है, अर्थात ज्ञान को उल्टी रीति से यूज करने वाला या उल्टा सीधा ज्ञान को सुनाने वाला, उसको खतरनाक कहते हैं। तो ऐसे ही हमने कुछ पॉइंट निकाले हैं। पहला है, बाबा हमेशा मुरली में कहते हैं कि विनाश सामने खड़ा है, तो कुछ ब्राह्मण आत्मा कैसे किसको सुनाते हैं कि विनाश सामने खड़ा है, व्यर्थ टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो। कोई जो पढ़ाई में या एजुकेशन या डिग्री प्राप्त करने होते हैं तो उसको जाके ज्ञान सुनाते हैं कि इस चीज में क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, अविनाशी पढ़ाई पढ़ो, है ना। कोई बिजनेस में होता है तो व्यर्थ की कमाई क्यों कर रहे हो, अविनाशी कमाई करो। तो इस तरह से हम ज्ञान सुनाते हैं, तो ज्ञान को हमारी उल्टी रीति से एक ऐसी बातें करते हैं, लोग विकास की ओर बढ़ रहे हैं और ये विनाश की बात करता है। तो इस तरह से हम भी ज्ञान को फेस करते हैं कि विनाश सामने खड़ा है तो इन सबसे क्या फायदा है, ये तो विनाशी कमाई है, अविनाशी करो। तो इस तरह से भी फेस करते हैं। दूसरा पॉइंट है अमृत वेला। बाबा कहते हैं कि अमृत वेला कब से शुरू होते हैं, 2 बजे से, लेकिन बाबा ने किसी किसी मुरली में कहा है कि यह संगम युग ही पूरा अमृत वेला है। तो कुछ ब्राह्मण क्या सोचते हैं, क्या जरूरी है 3 बजे उठना 4 बजे उठना, जब अमृत वेला पूरा संगम युग ही है तो क्यों ना हम 5 बजे उठे 6 बजे उठे, 6 बजे भी तो बाबा को याद किया जा सकता है, है ना। तो इस तरह से भी कुछ ब्राह्मण आत्माएं मिसयूज करते हैं ज्ञान को, और कितने बजे उठते हैं 6 बजे 7 बजे, और उसको भी जो नहीं उठते हैं उसको भी कहते हैं कि बाबा ने कहा है मुरली में, चाहो तो मैं डेट भी बता सकता हूं आपको, इतनी ज्ञान है हमारे अंदर। तो कैसे बाबा की श्रीमत को मिसयूज करते हैं हम कि पूरा संगम युगी श्रीमत अमृत वेला है, तो हमें कोई टाइम फिक्स नहीं होता, लेकिन बाबा क्या कहते हैं, अमृत वेला में बच्चों को शकास देता हूं, अमृत वेला एक एक बच्चों के अंदर शक्ति भरता हूं, एक एक बच्चों की मुलाकात करता हूं, एक एक बच्चों की अवस्था देखता हूं, एक खास आत्मा के लिए कौन सा समय होता है, चार्ज करने के लिए, और वरदानी समय होता है, बाबा हमें वरदान देता है, और खास भगवान ब्राह्मण आत्माओं के लिए टाइम फिक्स किया है 3 बजे से लेकर 5 बजे तक, केवल प्राइवेट समय होता है जिस समय हमारे लिए स्वयं भगवान प्राइवेट होता है हमारे लिए। तो इस समय को हम कैसे मिसयूज करते हैं, फिर हमारी स्थिति क्या होती जाती है, नीचे गिरती जाती है, खुशी नहीं रहती है, कोई भी बातें या विघ्न या समस्या आती है तो उनका समाधान हमें नहीं मिलता, फिर हम बोलते हैं क्या हो रहा है, जबकि बाबा ने कई मुरली में कहा ब्राह्मण जीवन का आधार है अमृत वेला, अमृत वेला अमृत पान करने का समय है, आत्मा को सुजाग करने का समय है, आत्मा में दिनचर्या में आने वाली बातों को पर विजय प्राप्त करने का समय होता है, उस समय विश्व की आत्माओं को शकास देने का समय होती है, है ना। एक बार मम्मा से पूछा किसी ने कि मम्मा आप 2 बजे उठ के करते क्या हो, उस समय अमृत वेले का समय नहीं था, तो उस समय तो सभी नए नए बच्चे होते हैं, तो मम्मा बहुत उत्तर अच्छा दिए कि मम्मा ने कहा कि मैं सभी जो ब्राह्मण परिवार है जो बच्चे ये संगठन में रहते हैं उसको मैं सकास देती हूँ ताकि उसके भी कर्म श्रेष्ठ बने, नहीं तो जब आत्मा आती है जब ज्ञान में नहीं तो कितने वैरायटी तरह के संस्कार होते हैं, उस सब संस्कारों को मिटाकर एक संस्कार बनाना इतना सहज नहीं है, इसलिए उस सभी संस्कारों को क्या करना होता है, समाप्त करना होता है। तो इसके लिए जब आत्मा सोई हुई है तब उसको सकास समझे थे तो पावरफुल काम करती है, इसलिए जीवन में बहुत सारे विघ्न ब्राह्मणों के जीवन में इसलिए आते हैं कि वो बाबा की श्रीमत को इम्पोर्टेंस नहीं देते, और बाबा जो एक मुरली में कहते हैं उसको पकड़ लेते हैं और बाकी जो रोज कहते हैं उसको छोड़ देते हैं। तो अमृत वेले खास आम ब्राह्मणों के लिए, तो हम पूरा संगम युग तो है ही अमृत वेला, लेकिन खास टाइम हम लोगों के लिए होता है। तीसरा पॉइंट है मुरली। मुरली को भी कई ब्राह्मण मिसयूज करते हैं, कहते हैं मुरली तो वही रिपीट होती है ना, 5 साल का है वही रिपीट बार बार, क्या पूरी मुरली का सार मैं बताता हूँ। जो मुरली सुनने नहीं जाते वो व्यक्ति कहता है कि मैं पूरी मुरली का सार बताता हूँ आपको। क्या है पूरी मुरली का सार? अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो, चाहे अव्यक्तवाणी उठा लो चाहे सकार मुरली उठा लो, मैं आपको सार बताता हूँ। लेकिन यहां तक ही सीमित नहीं है, हम स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट के लाइफ में पढ़ाई भी होती है। खास बाबा हम लोगों के लिए पढ़ाने के लिए आते हैं परमधाम से, और केवल पढ़ाई ही नहीं होती है, हमारे जीवन में कई सारे ऐसे बातें होती है जिसका उत्तर नहीं मिलता है, वो हमें मुरली से मिलता है। कई ऐसे हम बातें होती, बहुत सारे जो अनुभवी आत्माएं होते उनसे पूछते तो भी हमें उत्तर सही नहीं मिलता और उस उत्तर से हम संतुष्ट नहीं होते, वो उत्तर हमें मुरली में मिलती है। तो मुरली को भी कई ब्राह्मण आत्माएं इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। आज भी बाबा ने कहा जिसको भगवान से प्यार है वो मुरली जरूर पढ़ेंगे, और बाबा ने दूसरे लाइन में भी कहा कई आत्माओं के पास मुरली तो होती है लेकिन पढ़ते नहीं है, है ना, ऐसे भी आत्मा है। तो मुरली को इंपॉर्टेंस ना देना, ये भी खतरनाक ज्ञानी आत्मा की निशानी है। थोड़ी सी बातें और परिस्थिति आए तो तुरंत क्या हो जाते हैं, डिसर्विस वाली बातें करने लगते, बाबा क्या है, मुरली क्या है, ये ब्राह्मण परिवार क्या है, है ना, तो क्योंकि ज्ञान नहीं है ना बुद्धि में इसलिए। और बाबा ने क्या कहते, अगर एक बार कोई चीज की आदत पड़ जाए मिसयूज करने की तो चलती रहती है, अगर मुरली ना सुनने की आदत पड़ जाए तो भी चलती रहती है, इससे हमारा ही नुकसान होता है, हम बाबा से दूर होते जाते हैं। चौथा है जबरदस्ती किसी को ज्ञान सुनाना। कई ब्राह्मण आत्माओं में ऐसी आदत होती है कि जबरदस्ती जहां बैठते हैं वहीं ज्ञान शुरू, है ना, तो कईयों का सुनने की इच्छा नहीं होती। कई जो ज्ञानी नहीं होते ज्ञान से उसका कोई लेना देना नहीं होता, उसको भी हम जबरदस्ती ज्ञान सुनाते हैं, आओ हमें आपको 7 दिन का कोर्स कराते हैं, परमात्मा का ज्ञान देते हैं, इस तरह से फिर वो आत्मा और ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती है, फिर उसको बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं रहता ज्ञान में, ये हमें रोज आगे आके पकाता रहता है। तो इस तरह की हम ज्ञान सुनाते हैं, तो जबरदस्ती भी हमें किसी को ज्ञान नहीं सुनाना है। पांचवा पॉइंट है आत्मा का। बाबा कहते हैं हम सब एक पिता के बच्चे हैं, लेकिन कुछ ज्ञानी आत्माएं ऐसे होते हैं जो अपने युगल को भी आत्मा भाई कहते हैं, अपने बच्चों को भी आत्मा भाई कहते हैं, हम ना अपने जो और जो होते हैं सास ससुर सबको आत्मा आत्मा कहते हैं। तो घर वाले क्या समझते, जब से इसने ब्रह्मा कुमारी में जाना शुरू किया है इसका दिमाग आउट हो गया, सबको आत्मा आत्मा बोलती रहती, कोई इसको क्या कहते संबंधों का ज्ञानी नहीं, पहले तो ठीक थी लेकिन जब से ब्रह्मा कुमारी में गए सबको आत्मा कहते, आत्मा भाई पति को भी आत्मा। तो जो बाहर वाले सुने ये कैसा ज्ञान देते हैं, है ना, तो ये भी एक प्रकार का मिसयूज है। बाबा कहते आत्मा तो है लेकिन जो शरीर का संबंध है, माँ पुत्र का है, भाई बहन का है, या युगल का है, या सास ससुर का है, जो भी संबंध है उसको हम उस संबंध से हम यूज करें, ना कि हर जगह उसको आत्मा भाई इस तरह से। तो कभी कोई पूछ भी लेते ये कौन है, आपका युगल है कि आपका भाई, तो बोलते हैं कि मेरा भाई, लेकिन सामने वाला तो कहते हैं आपका युगल है, तो कैसी बात करते। तो ज्ञान को हमें समझना है, है ना, ज्ञान को प्रैक्टिकल में लाने की यूज है, ना कि सब जगह उल्टा सीधा यूज करने की, तो ये भी खतरनाक की बात है। दूसरा है बाबा कहते हैं ब्राह्मण जीवन में चलते चलते अहम की उत्पत्ति हो जाती है। अहम मतलब मैं ही सब कुछ, जैसे कि बाबा सुनाते हैं कई ऐसी संदेशी थी जो ऊपर से संदेश लाती थी और मम्मा बाबा को डायरेक्शन देती थी कि बाबा ने ये संदेश दिया है, तो उसमें भी अहम आ जाता था कि मैं मम्मा बाबा को सुनाती हूँ, मेरे अनुसार मम्मा बाबा चलते हैं, तो उसमें भी मम्मा बाबा क्या चीज है, मैं उनसे बड़ी हूँ, तो इस तरह का अहम अर्थात उल्टा नशा भी आ जाता है ज्ञान में, तो भी हम डिसर्विस के निमित्त बन जाते हैं और फिर हम सबको बताते हैं कि ये क्या चीज है, हम ही इनसे बड़े हैं, तो इस तरह से हमारी उन्नति नहीं होती और ही हमारी स्थिति डाउन होती जाती है। तो अहम भी हमारे जीवन में नहीं आना चाहिए किसी भी प्रकार का। कई विशेषता और कई बातें हमें बाबा के बनने के बाद मिलती है जो हमारे अंदर होती ही नहीं 1% भी। चले किसी का अच्छा स्पीच करने की कला आती, कई कई बार तो किसी को बोलने भी नहीं आता लेकिन उसकी स्पीच अगर अच्छी हो जाए तो अपने आप को बहुत ज्यादा होशियार समझते हैं और बाबा की श्रीमत को इम्पोर्टेंस नहीं देते, जबकि हम बने तभी बाबा के बने तभी हमारे अंदर ये योग्यता है, धारणा या विशेषता आई, फिर हम उस धारणा को मिसयूज करने लगते हैं, अपने प्राइवेट पर्सनल के लिए यूज करना शुरू कर देते हैं। तो इस प्रकार की हमें डिसर्विस नहीं करनी है। कई बार होते हैं हम किसी से मिलते हैं, कहीं पे जाते हैं तो पूछते हैं क्या हम आपसे कभी मिले हैं। तो एक बार ऐसी ओपीडी में कोई पेशेंट आए तो डॉक्टर ने पूछा कभी आप और आए हो यहाँ ओपीडी में, तो उसने कहा हाँ 5,000 साल पहले मिले थे। तो अब उसका कैसे ट्रीटमेंट करेगा, कौन सी दवाई उनके लिए लिखेगा। तो इस तरह से हम ज्ञान को कहीं भी किसी भी रीति से यूज कर सकते हैं। तो डॉक्टर भी सिर पकड़ के बैठ गया, ये क्या बोल रहे हैं। तो उसमें कोई बीके भाई तो उसने समझाया ये ऐसे, तो उसको बताया नहीं नहीं, तो फर्स्ट टाइम आए थे उसका। तो इस तरह से यूज करते हैं, तो हमें उल्टी रीति से ज्ञान यूज नहीं करना है। कई बार हम ट्रेन में यात्रा करते हैं, ट्रेवल करते हैं, तो ऐसी एक माता की घटना है। तो उसके पास टिकट थी जनरल डब्बे की, और बैठ गई जाके स्लीपर में। अब टीटीआई आया, पूछा टिकट कहाँ है, तो उसने टिकट दिखाया जनरल डिब्बे की और बैठे हैं स्लीपर में। ये तो गलत है गवर्नमेंट के रूल के हिसाब, अब इसमें कैसे बैठे हो। तो उसने कहा माता जी ये ला ही नहीं है। तो माता जी ने कहा हमारे बाबा ला की बात नहीं करते, लव की बात करते, आप लव की बात करो। तो माता जी को क्या पता कि ला और लव क्या होती है। तो ऐसे बहुत सारे बातें होती है जो हम मिस यूज करते हैं, तो उसको फिर कुछ किया होगा। तो इस तरह से हम ज्ञान क्लियर करना चाहिए। कई बार होते हम दूसरे से ऐसे पेश आते हैं कि हम ज्ञानी वो अज्ञानी, ऐसे भी हम आते हैं। तो कई बार हम संगठन में रहते हैं या बाहर में भी रहते हैं, तो बाबा कई बार मुरली में आते, अभी 2-4 दिन पहले आए, पतित आत्माओं से लेन देन नहीं करनी। तो इसका मतलब क्या है, अगर व्यक्ति पूरा तो ज्ञानी हो ही नहीं सकता, ऑल इंडिया में सबके सब बीके तो नहीं हो सकते ना। हमें बहुत सारी जरूरत है, जो बीके नहीं है उसके पास जाना होता है, तो हम कैसे डील करें। तो बाबा कहते हैं इसके लिए विधि चाहिए, बाबा ने विधि के हम उसको कुछ दे रहे तो हमें कुछ दे रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि वो अज्ञानी है, अगर हम उसके पास ना जाएं तो हमारा काम ही रुक जाएगा। जैसे हम पेशेंट है तो अगर हम डॉक्टर के पास नहीं, डॉक्टर तो बीके नहीं है तो हम ठीक हो सकते हैं क्या। अब बोलते हैं अज्ञानी के पास जाना ही नहीं है। तो बाबा कहते जहां जरूरत है अज्ञानियों का संग हमें नहीं करना है ना, जो हमें बुरी राह दिखाए, जिसके मत पर चलने से हम भगवान से दूर हो सके, ऐसी मत पर हमें नहीं चलना। बाकी जो जरूरत होती, किराना सामान लेना होता है तो दुकान में तो जाना ही पड़ेगा कि नहीं जाना है, कि पानी की रोटी बनाओ, पानी की सब्जी बनाओ, पानी की दाल बनाओ, पानी को ही खाओ, ऐसा तो नहीं चलेगा ना। तो हमें किस तरह से डील करना है वो भी हमें आना चाहिए। और अगला पॉइंट है, हम जब ज्ञान मार्ग में आते हैं तो कई ज्ञान आत्माएं होते हैं जिससे हम चलते रहते हैं। तो जब हम किसी का सहयोग नहीं करते, ज्ञानी ज्ञानी होते हैं, दो तरह के ज्ञानी होते हैं है ना, एक धारणा वाले और एक होता है बैच लगाकर सफेद कुर्ता वाले ज्ञानी। उसको धारणा से कोई मतलब नहीं, ना तो धारणा की बातें सुनने पसंद है ना तो धारणा वाली बात पसंद। तो कई बार वो कुछ ऐसे अमर्यादित या भगवान की श्रीमत के अनुसार कार्य करते हैं, तो जब हम उसका सहयोग नहीं करते, सपोर्ट नहीं करते कि आप गलत कर रहे हो, अगर हम ऐसे बोलते हैं तो फिर वो आत्माएं हमारी आलोचना करती हैं। जितने भी लोगों के साथ हमारे अच्छे रिलेशनशिप होते हैं उसके पास जाकर हमारी गलानी करते हैं कि देखो ये ऐसा करते हैं, बीके होके भी सपोर्ट नहीं करता। लेकिन अगर आप गलत कर रहे हो, श्रीमत के विरोध कर रहे हो, तो कैसे व्यक्ति आपका सपोर्ट कर सकते हैं। तो हम बुराई भी करने लग सकते हैं, उसकी गलानी भी करने लगते हैं, तो हम ज्ञान को मिसयूज करते हैं, तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। अगला पॉइंट है, बाबा कहते हैं कि यही एक सत्य ज्ञान है। तो हम जो अलग अलग धर्म में चलने वाले लोग हैं, सिख है, ईसाई है, मुस्लिम है, तो हम सबको यही कहते हैं कि हमारा ज्ञान ही सर्वश्रेष्ठ है, तुम्हारा ज्ञान बेकार है ना, तुम्हारा ज्ञान कुछ भी नहीं, हमारा ज्ञान ही सर्वश्रेष्ठ है। तो जब हम ऐसे किसी को कहते हैं तो क्या समझते हैं दूसरे कि इसको समझ नहीं है, कि अपने को अहम देना, अपने की ही बड़ाई करना, ये भी एक डिसर्विस के निमित्त बन जाए। उसका एक धर्म अलग है, वो धर्म में चल रहे हैं, जो ईसाई को मानने वाले ईसाई को ही मानेंगे। इसी पर एक रमेश भाई जी ने एक कहानी बता रहे थे कि एक माता जी रोज सेंटर पे आती थी, तो रोज सेंटर पे आती थी तो भक्ति भी करती थी और मुरली भी सुनती थी, तो कृष्ण की भक्ति थी। तो माता जी आप ज्ञान भी सुनते हैं, मुरली भी, भक्ति भी करते, ऐसा कैसा। तो रमेश भाई जी ने उसको कुछ ज्यादा कुछ कहा नहीं, लेकिन उसने कहा ठीक है जो आपको करना है वो करो। लेकिन धीरे 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 ज्ञान सुनते सुनते उसकी भक्ति कब छूट गई उसको पता ही नहीं चला। तो ऐसे हमें जो कोई मानने वाले किसी धर्म को पंथ को, तो हमें उसको एकदम फोर्स नहीं करना चाहिए कि नहीं आप इसको छोड़ो, अगर आप ब्रह्मा कुमारी में चलना है तो इसको छोड़ना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं हम फोर्स कर सकते। जैसे जैसे उसको ज्ञान क्लियर होगा, बाबा से प्यार बढ़ेगा, श्रीमत पर चलेंगे, समझ बढ़ेगी, तो ऑटोमेटिक वो आत्माएं उस चीज को छोड़ देगी। अगर हम जबरदस्ती किसी को करते हैं तो भगवान से और ही दूर हो जाते हैं, और इसके के जिम्मेदार हम स्वयं हो सकते हैं, उसके भाग्य पर लकीर लगाने की निमित्त बन सकते हैं। इसलिए ब्राह्मणों का ज्ञान जो है बहुत अच्छा तो है, लेकिन सुनाने का तरीका गलत होते हैं, वो किस चीज को इम्पोर्टेंस देता है हमें पता होना चाहिए। और जैसे उसको ज्ञान अच्छी लगेगा वो ऑटोमेटिक उस चीज को छोड़ देते हैं। ज्ञान में चलने से पहले कोई ना कोई किसी ना किसी चीज को मानते हैं, कोई हनुमान को मानते हैं, कोई कृष्ण को, कोई गणेश को, इस तरह से मानने वाले भी लोग होते हैं। तो नहीं ये सब आपको छोड़ना होगा अगर ब्रह्मा कुमारी में चले, तो इस तरह का भी ज्ञान हमें नहीं देना है। जैसे ज्ञान क्लियर होगा तो ऑटोमेटिक वो छोड़ देंगे। अगला पॉइंट है कि हम ज्ञान को किस तरह से यूज करते हैं। कई बार सेंटर में कुछ भाई बहन आते हैं तो आत्मा आत्मा भाई भाई का पाठ हमें पढ़ाया जाता है, और हम कहते हैं ब्रह्मा बाप कि हम सब बच्चे हैं तो आपस में भाई बहन हैं। तो भाई बहन का भी कोई कोई मिसयूज करते हैं। कैसे मिसयूज करते हैं? तो कोई कोई बिजनेस में जुड़ा होता है ना, कोई कंपनी में या कुछ, तो वहीं आके वो बिजनेस शुरू करने लग जाता है। ज्ञान मार्ग में आप इससे जुड़ो तो आपको इतना फायदा हो गया, आप इस कंपनी में जुड़ो तो इससे इतना फायदा होगा, आप भी ज्ञानी मैं भी ज्ञानी हूं, है ना। इस तरह से वो यज्ञ का पैसा यज्ञ का को नुकसान करने के निमित्त बन जाते हैं। तो ये भी एक प्रकार की खतरनाक ज्ञानी की निशानी है। भले आपको जो भी जिसमें जुड़े हो, लेकिन ज्ञान में आके माने सेंटर में आके या गीता पाठशाला या मधुबन में, तो इस तरह के उसे बातें नहीं करना चाहिए जिससे वो डिससर्विस की, आज नहीं तो कल वो कंपनी बंद हो जाएगी, तो किसका नुकसान होगा, जो इसने कहा उसका भी, और प्लस ब्रह्मा कुमारी का भी डिससर्विस। देखो ये यहाँ आते हैं लेकिन ये बिजनेस करने के लिए आते हैं, तो इस तरह की बातें भी होती हैं। तो जो चीज जहां है उसको वहां रहने दें और ज्ञान को हम अलग करें। इसलिए बिजनेस की बातें भी हम यहां ज्यादा ना करें। इसलिए कहीं पर लिखा भी होता कई सेंटरों कि यहां हम ज्ञान योग के लिए आते हैं तो ज्ञान योग की हम बातें करें, बिजनेस की बातें बाहर रखें। तो ऐसे हैं। तो कुछ ब्राह्मण आत्माएं भी ऐसे होती है। अगले पॉइंट है, कल हम एक भाई के पास बैठे थे तो मुरली की कॉपी आती है, तो छोटे छोटे कॉपी आती है सबके पास जेरोक्स करके, तो उसके पास बड़ी थी। तो मैंने पूछा मुरली कहाँ से आई आपके पास, किसने दिया आपको ये बड़ा कॉपी? तो उसने कहा बाबा ने दिया, बाबा ने। फिर मैंने उसको पूछा किसने दिया, तो ऐसे बार मैंने पांच बार एक ही शब्द को रिपीट किया कि उसने कहा बाबा, बाबा ने आज तक नहीं कहा मुरली में कि मेरा शरीर है, ना तो उसका पैर है, ना तो उसका शरीर है, ना तो उसका हाथ है, तो ला के देगा कैसे हो? तो कैसे
समझना चाहिए उनको, पता ना नहीं।
हाँ, बस आखिरकार मैंने एक ही प्रश्न पांच बार किया उस भाई से, तो आखिरकार उसने बताया कि इस भाई ने दिया। तो इस तरह से जब कोई व्यक्ति कम समय हो अगर सीरियसली बात करता हो तो हम ज्ञान की पॉइंट को मिसयूज कर, उसके पास टाइम भी नहीं होता है ना, क्योंकि बड़ी मुरली माने की प्रिंट भी अच्छा होता है, उसकी अक्षर भी बड़े होते, तो हम भी शायद हमें मिल सकते, इसलिए मैंने पूछा उसको। तो कैसे हम ज्ञान को मिसयूज करते हैं? तो भगवान ही दिया। वैसे एक भाई ने किस मोबाइल खरीदा होगा, तो किसी से पूछा कि किसने दिया आपके पास, तो कोई इनकम है ही नहीं, तो उसके भाई ने गिफ्ट किया। तो अच्छा, तो उसने सीधा डायरेक्ट कहा बाबा ने दिया, तो बाबा कैसे दे सकता है, है ना, बाबा के पास मोबाइल खुद ही नहीं है तो आपको मोबाइल क्यों देगा? तो ऐसे ऐसे बातें करते हैं। तो हमें भी थोड़ा सा सजग होके बात करना चाहिए, ज्ञानियों की तरह बात करने, खतरनाक ज्ञानियों की तरह बात ना करना चाहिए। तो ऐसे छोटे छोटे ऐसे हमारे जीवन में होती है जिससे हम बात करते हैं, ऐसी रिलेशनशिप के होते हैं। हम ब्राह्मण परिवार है तो बाबा ने हमें मर्यादाओं का पाठ भी पढ़ाया है, तो हम भाई बहन समझ के सुबह से लेकर शाम तक किसी भाई या बहन के साथ घूमते रहते हैं, और कोई कहता है क्या है आप दोनों का, जब से देखो तब से सब चीज सेम सेम है ना। तो बाबा कहते हैं हम आत्मा हैं और हम पिता परमात्मा के बच्चे, लेकिन आपस में भाई बहन, लेकिन रिलेशन से बातचीत करने से उठने बैठने से तो ये नहीं लगता कि आप दोनों भाई बहन, अब दोनों का तो और ही कुछ अलग लगता है। तो ये भी एक प्रकार से उल्टे ज्ञानी और खतरनाक व्यक्ति के लक्षण लगते हैं, खतरनाक पंडित के लक्षण। तो ये भी एक डिससर्विस के निमित्त बन जाते हैं और आगे चलकर यही आत्माएं डिससर्विस के निमित्त बनती है। तो ऐसा हमारा कर्म ना हो, रिलेशनशिप तो रखना ही है ब्राह्मण परिवार के साथ, लेकिन ऐसा रिलेशनशिप ना रखना जिससे हमारे उल्टे ज्ञानी होने की निशानी लगे या भगवान के कार्य में डिससर्विस के हम निमित्त बने। तो ऐसे बहुत सारी बातें होती हमारे जीवन में। और किसी को होता है डराना, ब्लेम करना, डराते भी हैं कई ज्ञानी आत्माएं। जब हम किसी ज्ञानी के साथ बहुत अच्छा रिलेशनशिप होता है और उसके साथ चलते रहते हैं, जब हम उसकी बात मानते हैं फिर बीच में ऐसे हम छोड़ देते हैं, लगता है कि इनकी दिशा गलत हो गई है, तो हम उसकी रिलेशनशिप कट कर देते हैं। अगर हम उसको समझाते हैं कि ये गलत है तो हम उससे नहीं, तो वो बोलता है तुम्हारा ये कर दूंगा, तुम्हारा वो कर दूंगा, तुम्हें ये कंप्लेन करूंगा, वो कंप्लेन, इसके पास शिकायत करूंगा, उसके पास। एक ज्ञानी आत्मा दूसरे ज्ञानी आत्मा को कहती है, तो वो भी तो भगवान की मुरली सुनता है, वो भी भगवान की श्रीमत पर चलता है, तो उसके पास भी तो समझ होती है ना कि कौन सी श्रीमत है कौन। अगर आप श्रीमत से भटक गए उसका मतलब ये नहीं कि मैं आपकी सहयोग करूं, है ना भाई। लेकिन तो उसको डराते हैं कि आप भी मेरे गलत कार्य में सहयोगी बनो, तो आप तो पाप कर्म करने के निमित्त बन ही रहे हो, साथ साथ आप मुझे क्यों अपने उसमें सहभागी बना रहे हो। तो इस तरह के भी कुछ ब्राह्मण आत्माएं होते हैं जो अपनी पावर को गलत तरीका से इस्तेमाल करते हैं। कई बार हम सेंटर में जाते हैं तो कुछ स्टूडेंट होते हैं जो इस सेंटर में जाते हैं, तो फिर कुछ कारण होता है तो वो दूसरे सेंटर में, तो बहन जी को जैसे पता चलता है, बहन जी अच्छा तू सेंटर में जाना शुरू कर दिया, अच्छा कौन सेंटर है, अच्छा बहन जी का फोन नंबर निकालो, ये भाई ऐसा करता है ऐसा करता है, बहन ऐसी है ऐसी करती है, तो उसकी पूरी हम ग्लानी करते हैं ताकि उस सेंटर में भी वो मच जा सके। तो इस तरह से हम ज्ञान को कैसे अपने स्वार्थ के लिए यूज करते हैं। तो इस तरह से हम भगवान के सर्विस में क्या होते, सहयोगी बनने के बजाय डिससर्विस करने के निमित्त, फिर हमें पता चलता है ना कि वास्तव में कितना ज्ञानी है कितना योगी है। तो इस तरह से हम बाबा के ज्ञान को उल्टे रहते से उठाते हैं और खतरनाक तरीका से प्रयोग करते हैं। आज और अगला पॉइंट है, और क्या क्या हो सकता है ऐसा जो हम ज्ञान को उल्टा रीति से यूज करते हैं।
ब्राह्मण बोलते हैं डायरेक्ट शिव बाबा,
हाँ
ब्रह्मा बाबा,
हाँ ये भी बाबा कहते हैं। मुरली मक्सर पॉइंट आता है कि शिव बाबा से हमारा डायरेक्ट कनेक्शन ब्रह्मा से क्या, लेकिन बाबा हमेशा कहते हैं कि मेरा तो शरीर नहीं लेकिन मैं इसका माध्यम से ही आता हूँ। इसलिए बाबा ने एक मुरली में कहा, अगर ब्रह्मा जो कहता है उसके जिम्मेदार मैं स्वयं हूँ। इसलिए जो आधार है उनका भी इम्पोर्टेंस होता है। जैसे शिव बाबा है तो शिव बाबा किसी को निमित्त बनाया होता, उस निमित्त का भी हमें बात मानना चाहिए। कई भाई बहन होते हैं जो डायरेक्ट मधुबन में आ जाते, उसके पास लेटर भी नहीं होते, तो जब उसकी पूरी इंक्वायरी किया जाता है तो बहन जी बोलते हैं हमने तो भेजा ही नहीं इसको, ये आया कैसे यहाँ। तो ये भी एक डिससर्विस है खतरनाक ज्ञानी की, कि हम डायरेक्ट मधुबन जा सकते हैं। उसके भी कुछ रूल्स और रेगुलेशन होते हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं। ऐसे नहीं कि हम ज्ञानी हैं तो हम कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी आ सकते हैं। तो ऐसे कल कुछ मैं पढ़ रहा था तो कुछ भाई बहन ऐसे लिखते हैं कि मधुबन से हम सेवा करने आते हैं, जब मधुबन में फोन करके बातें पूछी जाते तो यहाँ से ना तो कोई भाई को भेजा गया ना तो कोई बहन, तो उसके लिए भी एक लेटर अब निकाला गया है नया नियम कि उससे कि पूछा जाए कि आप मधुबन से लेटर लाए हो। इसलिए मधुबन से जो भी जाते उनके लिए पास एक लेटर होता है कि कोई भी सेंटर में, हम कैसे माने कि आप ज्ञानी हो, बैच लगाने सफेद कपड़ा पहनने से तो कोई ज्ञानी नहीं हो सकता, तो उसके लिए एक प्रूफ बनाया गया। तो इस तरह से भी कोई अपने उसमें बहुत सुंदर लिखा था, अपनी स्वार्थ मनोकामना को पूरा करने के लिए घूमते फिरते रहते हैं। माने कहा जाए तो अपने एक प्रकार के स्वार्थ को पूरा करने के लिए वो व्यक्ति घूमते फिरते रहते हैं और यज्ञ की सेवा को छोड़कर। तो इस तरह के भी हमें डिससर्विस के निमित्त बन जाते हैं, हम पकड़ पकड़ के किसी भी सेंटर में चले जाते हैं, कोई हमें बुलाता भी नहीं, कोई जानते भी नहीं, ऐसे ऐसे सेंटर में जाने के तो भी एक प्रकार की डिससर्विस और खतरनाक ज्ञानी के लक्षण होते हैं। तो हमें ऐसे भी नहीं करना चाहिए। और कौन पॉइंट हो सकते हैं, हाँ अंदर एक बाहर दूसरा, हाँ मीठे मीठे बोल, स्वार्थ के बोल। जब हमें काम होता है तो हम दूसरे से बहुत प्यार से और मीठे से बात करते हैं क्योंकि हमें काम करवाना है, इसलिए। और जैसे ही काम पूरा हुआ है तो हम उसकी तरफ देखते भी नहीं, ओम शांति भी नहीं बोलते। तो ऐसे भी होते हैं, जब तक व्यक्ति हमारे काम करता है तो हमें लगता है कि ये व्यक्ति हमारा अच्छा है, और जिस दिन से हमारा कुछ कारणवश या किसी वो लगता है कि अब ये नहीं करना चाहिए, ठीक नहीं है, स्वार्थ है या व्यक्तिगत के लिए वो व्यक्ति करता है, तो व्यक्ति फिर उसकी ग्लानि करता भी है, ग्लानि भी करते है उसकी, फिर वो मतलबी हो जाता है। तो अंदर बाहर दूसरा एक। और कई बार कुछ ज्ञानी आत्मा ऐसे होते हैं जिसके अंदर खुद भी धारणा नहीं होती, लेकिन दूसरों को धारणा कराना चाहते हैं कि नहीं आपको ऐसे ही करना है जो बाबा कहते हैं, लेकिन वो खुद के ऊपर कोई अटेंशन नहीं होता, कोई धारणाएं नहीं होती, लेकिन वो दूसरे के ऊपर जबरदस्ती करता है कि नहीं आपको करना ही है श्रीमत का पालन, लेकिन वो कर नहीं पा रहा है, शायद कुछ कारण भी हो सकता है, जैसे किसी को अमृत वेला उठना है, प्रेशर डाल रहे उसको, लेकिन उसका तबीयत खराब भी हो सकता है, या कोई ऐसी मेडिसिन चलती है जिससे नींद आता है। तो कई बार ऐसे भी बोलते हैं आप योग में तो बैठते हो लेकिन नींद करते रहते हो, लेकिन शायद उसका कुछ कारण भी हो सकता है। तो लोग उसके ऊपर ब्लेम करते हैं, उसको क्रिटिसाइज करते हैं, उसकी आलोचना करते हैं, देखो मुरली में बैठता है लेकिन सोता रहता है। लेकिन एक बार पूछो तो उसको कि क्यों नींद आ रहा है, कोई दवाई तो नहीं चल रही आपको, क्योंकि दवाई अक्सर लेते हैं तो व्यक्ति को नींद आता है, ज्यादातर दवाई में नींद, ताकि उसको जल्दी से रिलीफ मिले। तो हम क्रिटिसाइज करते, उसकी आलोचना करते दूसरे व्यक्ति, हम बताते सबको ये व्यक्ति जब भी मुरली में बैठेगा सोएगा, 100% गारंटी, आप भी देख लेना जाके। तो इस तरह से हम उसकी ग्लानी करते हैं, ये भी डिसर्विस है। उसका कोई अलग अलग बहुत सारे रीजन भी हो सकते हैं, कई बार होता है कि नींद नहीं आती है रात को अच्छे से तो मुरली में नींद आता है, या कोई की नाइट ड्यूटी होती है ना तो भी मुरली में जाकर बैठेगा तो भी नींद आती है। तो बहुत सारे कारण होते हैं, तो हमें सीधा डायरेक्ट व्यक्ति पर अटैक नहीं करना चाहिए, उसको पहले सोचना चाहिए हमें कि वास्तव में उसकी गलती है कि नहीं है, तब जाके उसके ऊपर करना चाहिए। और हाँ जेलसी के संस्कार होते तो भी हम उसकी आलोचना करते हैं, हाँ वो आगे नहीं, कल की मुरली में था, हम तो करना चाहते थे लेकिन इसने करके दिखा दिया। तो बाबा कहते जेलसी के, लेकिन आगे वही बढ़ता है जो पुरुषार्थ करता है, मेहनत करता है, कितने उनके लाइफ में बातें होती है ना। तो हर चीज के लिए उसको देखना चाहिए, हम केवल एक एंगल से व्यक्ति, एक पुराना और एक नया, लेकिन वो कितनी मेहनत कर रहा, वो आपसे डबल मेहनत कर रहा होगा, इसलिए तो आपसे आगे गया ना। अगर आप उससे ज्यादा मेहनत करते हैं तो आपको मिलता। कई लोग प्रश्न पूछते हैं ना सूरज भाई जी से कि ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा क्यों आते, क्या हमारे ऊपर नहीं आ सकते? तो बहुत सुंदर आंसर, अगर आप ब्रह्मा बाबा से ज्यादा पुरुषार्थ करो तो शायद नेक्स्ट टाइम आपके ऊपर भी आ जाए, है ना। तो पुरुषार्थ व्यक्ति करना नहीं चाहता, लेकिन उपलब्धि चाहना पाना चाहता है, नाम पाना चाहता है, सम्मान पाना चाहता है, लेकिन उसके लिए कर्म भी तो करना होता है ना। बिना कुछ किए कोई कुछ बनता नहीं, स्वामी विवेकानंद बनाए तो कितनी मेहनत, अगर उसके जीवन में देखा जाए तो भारत में कितने आए हैं लोग, लेकिन उनके जैसे तपस्वी तो कोई नहीं आया ना, लेकिन उसने भारत में क्या अमेरिका में भी जाके भारत का नाम रोशन, लेकिन व्यक्ति मेहनत नहीं करना चाहते लेकिन मुफ्त में हर चीज प्राप्त करना चाहते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए हमारे जीवन में, अगर मेहनत करोगे तो सफलता आपके कदम चूमेगी। बाबा हमेशा कहते हैं, बाबा भी ज्ञान भी देते हैं तो पहले ठोकता है, देखते हैं कि इनके अंदर योग्यता है कि नहीं, इसलिए तो देखते हैं ना कई लोग 10 साल ज्ञान में चलते फिर आउट हो जाते हैं, कई लोग 15 साल ज्ञान में चलते आउट हो जाते, क्यों होते हैं? क्योंकि रियल में वो ज्ञान को समझते ही नहीं, ज्ञान है ही क्या, ज्ञान एक लंबी यात्रा है, जब उसको पता चलता है जीवन तो ज्ञान आजीवन है, इसमें हर चीज रोज करना होता है, अमृत वेला भी रोज करना है, मुरली भी रोज करना है, सेवाएं भी रोज करनी, जो बाबा की मर्यादा है उसमें भी रोज चलना है, ऐसे नहीं आज मर्यादा में कर लो चलो कल डिसर्विस करो तो कितना नुकसान होता है। और बाबा क्या कहते हैं वो तो और सबसे ज्यादा दुखी होते हैं जो बाबा के बनने के बाद बाबा को छोड़ते हैं, उनसे ज्यादा दुखी संसार में और कोई नहीं रहता, क्योंकि उनके अंदर पूरा ज्ञान रहता है, इसलिए वो सबसे ज्यादा दुखी, और वही सबसे ज्यादा फिर डिसर्विस के निमित्त बनते हैं। इसीलिए कहते हैं कमजोर व्यक्ति सदा ही दुखदायी होता है, क्यों? क्योंकि वो हमेशा कमजोर ही रहता है, इसीलिए बाबा कहते हैं ये देवता बनने की अभी क्या चल रही है, प्रैक्टिस चल रही है, अगर आपके अंदर योग्यता होगी तो भी बन पाओगे, और नहीं बनोगे तो अलग हो जाओगे, इसलिए हमें योग्यता है साबित करनी है अपनी, है ना। बाबा कहते हैं भाग्य तो हरेक को देते हैं और मौका भी हरेक को मिलता है, लेकिन उस मौका को हम कितना फायदा उठाते हैं, जैसे एडमिशन स्कूल में तो सभी लोग लेते हैं लेकिन उसमें से 2-4 लोग ही डॉक्टर बनते हैं, दो चार लोग ही इंजीनियर की पढ़ाई कर पाते, दो चार लोग ही लॉयर की पढ़ाई कर सकते जिनका टेंशन होता है। वैसे ही पुरुषार्थ के मार्ग में निरंतर हम पुरुषार्थी रहे, निरंतर हमारा अमृत वेला हो, उसके लिए हमें अटेंशन की जरूरत है, अच्छे संघ की आवश्यकता। कहीं ज्ञानी ज्ञानी हम सोचते हैं अच्छा स्पीच कर रहा है इसका मतलब ये अच्छा योगी हो, इसकी कोई गारंटी नहीं। अच्छी स्पीच कर रहा हो तो इसकी धारणा अच्छी हो, इसकी कोई गारंटी। हमें जज करना होता है कि इसकी धारणाएं कैसी हैं, कि हमारे साथ फ्रेंडशिप करें तो इसकी दो हमारी उन्नति होगी कि नहीं होगी। कई बार हम बीके हैं समझ के हम दोस्ती तो कर लेते, लेकिन जब से उसके साथ दोस्ती किए हों तब से हमारी बदनामी हो रही, तब से हमारी अवस्था गिरे, तब से हमारा मुरली मिस हो रहा, तब से हमारी अमृत वेला मिस हो रहा। ऐसे भी होते हैं कई बार, लेकिन उस व्यक्ति को छोड़ नहीं पाते, इस तरह की हमारी फ्रेंडशिप हो जाती है। हम सोचते हैं अब क्या करें, फंस गए चक्रव्यूह में, तो अब एक तो भगवान को छोड़ो या तो व्यक्ति को छोड़, लेकिन व्यक्ति इस तरह से चक्रव्यूह में फंसता है। हम तो सोचे थे कि ये ज्ञानी है, लेकिन ज्ञानी नहीं है, तो पूरा का पूरा ज्ञानी निकला। इससे अच्छा तो इसलिए दोस्ती करने से पहले हमें सोचना भी चाहिए कि ये वास्तव में हमारे लायक है कि नहीं। ऐसे भी होते कई बार, हम देखें कई आत्माओं को दोस्ती तो कर लेते लेकिन उसकी पूरा का पूरा ज्ञान से दूर ले जाने के निमित्त बन जाते ऐसी आत्मा। तो हमें ज्ञान को उल्टी रीति से नहीं उठाना। भगवान हमें सत्य ज्ञान तो देता है, लेकिन सत्य ज्ञान के साथ सत्य समझ भी देती है, तो उस पर हमें अच्छी रीति से समझ कर ही ज्ञान को रियल लाइफ में अप्लाई करना है और समझ के चलना है, तभी हम इस जीवन में सफलता हासिल कर सकते, नहीं तो हमें ये जीवन भी व्यर्थ लगता है। कई ब्राह्मण आत्माएं कह देते हैं अपने मुख से हम तो ब्राह्मण बन के फंस गए, तो इस तरह के बात ब्राह्मणों की आत्माओं से सौंपता नहीं है। इसलिए हर चीज को सोचो समझो परखो फिर आगे अपना निर्णय लो, नहीं तो व्यक्ति का लाइफ ना तो इधर का होता है ना तो उधर का होता है। इसलिए इस ज्ञान मार्ग में चलने के लिए हम किसी के ऊपर दबाव भी नहीं डाल सकते, फोर्स भी नहीं कर सकते, और अगर हम फोर्स और दबाव डाल के चलते हैं तो आगे डिसर्विस 100 में 100%। तो इस तरह की हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि ज्ञान मार्ग स्व इच्छा की है। देखो हम तीन चीज बाबा चार चीज हमें बात रोज कहती है, ज्ञान योग धारणा सेवा। सेवा तो हम मजबूरी से करते हैं, लेकिन ये तीन चीज हमारे पर्सनल है, ज्ञान भी पर्सनल, योग भी पर्सनल, धारणा भी। ये जो करते हैं पर्सनल वही आत्माएं लगता है कि ज्ञानी, लेकिन सेवा तो लाचारी से भी लोग करते हैं। जैसे कई सेवा आते हैं तो सेवा बस करते, उसका ज्ञान उससे कोई लेना देना नहीं मधुबन। तो एक भाई ऐसे आया था, तो एक भाई कुछ होते हैं ज्ञानी, तो उसने टोंट मारा मधुबन अच्छा है, खाया पिया और सेवा ज्ञान ध्यान कुछ नहीं, लेकिन मधुबन अच्छा है क्योंकि यहाँ सब कुछ सुविधा है, बस सेवा बस में अपना उपस्थिति देना अनिवार्य है, नहीं तो आपको रहना नहीं मिलेगा। तो इस तरह के भी हम डिसर्विस होते हैं, तो हमें केवल सेवा के लिए नहीं आते, हम स्वोन्नति के लिए भी आते हैं मधुबन में, तो हमें स्वोन्नति में भी ध्यान देना चाहिए। तो हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, डिसर्विस वाला नहीं, सर्विस वाला होना चाहिए। तो ये खतरनाक ज्ञानी पंडित की निशानी, तो हमें इस तरह का ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जो खतरनाक ज्ञानी पंडित की हम लिस्ट में है। ओम शांति।
पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ पंडित भयान को, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ पंडित भयान को, भयान को प्रेम। ब्रह्मा पंडित भयान को